What is the relationship between law and love?
व्यवस्था के बीच में और प्रेम के बीच में क्या संबंध है?
What is the relationship between Christ and commandments?
मसीह और आज्ञाओं के बीच में क्या संबंध है?
The antinomian says we are to look to Christ alone.
गैर व्यवस्थावाद वाला व्यक्ति कहता है कि हमें तो केवल मसीह की ओर देखना चाहिए.
He is the new law.
वही है जो नया व्यवस्था है.
We don't have anything to do with specific commandments.
अब हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है इन स्पष्ट आज्ञाओं को लेकर के.
Hebrews chapter 12.
इब्रानियों का 12 अध्याय.
Let us run with endurance the race that is before us.
और हमें संयम के साथ आगे की ओर दौड़ते चले आना है.
Fixing our eyes on Jesus.
हमें अपनी आंखों को यीशु की ओर लगाना है.
He is the goal.
वो हमारा लक्ष्य है.
He is the pattern.
वही हमारा उसी के अनुसार हमें करना है.
He is the new law.
वो नया व्यवस्था है.
We don't have anything to do with specific commandments.
अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है इन आज्ञाओं को लेकर के.
We love God.
हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं.
And we look to Christ.
और हम मसीह की ओर देखते हैं.
That is correct, but that is not all the Bible teaches.
यद्यपि ये बात सही है, किंतु ये वो संपूर्ण बाइबल सिर्फ इसी बात को नहीं सिखाता है.
Love is the motivation.
प्रेम तो प्रेरणा का सूत्र है.
The commandments give the direction.
किंतु जो आज्ञाएं हैं वो हमको दिशा दिखाती हैं.
Certainly, Christ is the pattern.
ये बात सही है कि यीशु मसीह हमारे लिए एक नमूना है.
But he said, I always do those things that are pleasing to my father.
लेकिन यीशु मसीह ने यह भी कहा, मैं वे सारी चीजें करता हूँ जो मेरे पिता को प्रसन्न करती हैं.
I give you commandments, he said.
वो उसने कहा, यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमको आज्ञाएं देता हूँ.
Just like my father has given me commandments.
जिस तरह से मेरे पिता ने मुझको आज्ञाएं दी.
And I have fulfilled my father's will.
और मैंने अपने पिता की इच्छा को पूरा किया है.
And you are to do my father's will.
और तुमको अपने पिता की इच्छा को पूरी करना है.
Where does God reveal his will?
और कहां पे है परमेश्वर अपनी इच्छा को पूरा दिखाता है हमें, अपनी आज्ञाओं में होकर के अपनी इच्छा को हमें दिखाता है परमेश्वर.
In his commandments.
उसकी आज्ञाओं में हम परमेश्वर की इच्छा को देखते हैं.
Let's look at three verses together.
आइए हम लोग साथ में तीन पदों को देख लें.
Galatians chapter 6.
गलतियों की पुस्तक उसका पत्री उसका पांच छठा अध्याय.
Talking about the Christian's relationship to commandments.
हम एक मसीह का आज्ञाओं से संबंध के बारे में बात कर रहे हैं.
We're talking about true obedience.
हम बात कर रहे हैं सच्ची आज्ञाकारिता के बारे में.
That comes out of our union with Christ.
जो हमारे मसीह से एकता में होकर के निकलती है.
Galatians chapter 6.
गलतियों उसका छठा अध्याय.
Verse 14.
उसका 14 पद. गलती 6:14.
It never be that I boast except in the cross of the Lord Jesus Christ.
ऐसा कभी ना हो कि मैं किसी बात पे गर्व करूं सिवाय यीशु मसीह क्रूस को छोड़ करके.
The world's crucified to me and I to the world.
और संसार मेरी दृष्टि में क्रूस पे चढ़ा जा चुका है, मैं संसार की दृष्टि में.
I am dead to the world, the world is dead to me.
ये संसार मेरे लिए मर चुका है, मैं संसार के लिए मर चुका हूँ.
Its power.
उसके सामर्थ.
Its lust.
उसका वासना.
Its philosophy.
उसके विचार.
Its attraction.
उसके आकर्षण.
They are dead to me.
ये मेरे लिए मर चुके हैं.
And I am dead to them.
और मैं उनके लिए मर चुका हूँ.
Notice verse 15.
देखिए 15 पद में यहाँ पे क्या कहता है.
Neither is circumcision anything or uncircumcision.
और ना ही खतना कोई महत्व का है, ना ही खतना रहित होना किसी बात का है.
But what is important?
लेकिन कौन सी चीज महत्वपूर्ण है?
A new creation.
एक नई सृष्टि.
It's not the outward circumcision of the flesh.
ये बाहरी मांस का खतना जरूरी नहीं है.
It is the inward circumcision of the heart.
लेकिन ये भीतरी हृदय का खतना है.
It is not outward religious ceremony.
ये बाहरी धार्मिक रीति विधियां नहीं है.
It is inward spiritual life.
लेकिन ये भीतरी आत्मिक जीवन है.
Neither circumcision or uncircumcision is anything.
ना ही खतना रहित होना कोई चीज है मेरे लिए.
A new creation.
किंतु एक नई सृष्टि.
And what does that produce?
और ये क्या चीज उत्पन्न करके लाता है?
Look in chapter 5.
और पांचवें अध्याय में देख लीजिए इसको आप.
Verse 6.
और उसके छठे पद में देखिए.
In Christ Jesus, neither circumcision or uncircumcision means anything.
मसीह यीशु में ना खतने का कुछ महत्व है और ना ही खतना रहित होने का कोई महत्व है.
What's important?
लेकिन क्या चीज महत्वपूर्ण छठे पद के अनुसार?
Working through through love.
केवल विश्वास जो कि प्रेम के द्वारा होता है.
Where does it begin?
कहां पे आरंभ होता है ये?
The new creation.
नई सृष्टि में.
What does it produce?
और क्या चीज उत्पन्न करके लेके आता है?
Faith.
सच्चा विश्वास.
How does faith work?
कैसे विश्वास कार्य करता है?
Motivated by love.
प्रेम के द्वारा प्रेरित होकर के.
And what does faith and love do?
और प्रेम और विश्वास क्या करते हैं?
Look in 1 Corinthians.
मेरे साथ देख लीजिए पहला कुरिन्थियों.
Chapter 7.
उसका सातवां अध्याय देखिए.
Verse 19.
उसका 19वां पद देख लीजिए.
He says it a third time.
वो तीसरी बार कहता है यहाँ पे.
Circumcision is nothing and uncircumcision is nothing.
वो कहता है खतना कुछ ना ही खतना कुछ है ना ही ना खतना होना कोई चीज़ बात.
What is important?
लेकिन क्या चीज़ महत्वपूर्ण है?
Look at the verse.
इस पद को देखिए यहाँ पे.
Keeping the commandments of God.
और परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करना.
What is the relationship of love and commandment?
और प्रेम और आज्ञाओं का क्या संबंध है?
Love supplies the motivation.
जो प्रेम है वो प्रेरणा को ला करके देता है हमारे सामने.
The commandments provide the direction.
और आज्ञाएं जो है दिशा को हमारे सामने उपलब्ध कराती हैं. तीन बार कहा है इसने.
Not circumcision or uncircumcision.
ना ही खतना रहित होना.
What's the first thing?
सबसे पहली चीज क्या है? एक नई सृष्टि. और दूसरी बात क्या है?
Faith working through love.
और विश्वास प्रेम में होकर के कार्यवंत होना.
What does faith do?
और विश्वास क्या करता है?
What does love motivate?
और प्रेम क्या चीज की प्रेरणा देता है?
Keeping the commandments of God.
परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करना.
So love and law do not contradict one another.
तो प्रेम और व्यवस्था एक दूसरे के विरोधाभासी नहीं है.
One supplies the motivation.
एक चीज जो है प्रेरणा को प्रदान करता है.
The other supplies the direction.
और दूसरी चीज जो है दिशा को प्रदान करता है हमारे सामने.
And the spirit gives the power.
और लेकिन पवित्र आत्मा है जो कि सामर्थ्य प्रदान करता है.
This is New Testament Christianity.
ये है नए नियम के अनुसार की मसीहत.
The new birth,
नया जीवन जन्म.
Producing true faith,
वो सच्चा विश्वास को पैदा करता है.
Motivated by love,
प्रेम के द्वारा प्रेरित.
And keeps the commandments of God.
और परमेश्वर की आज्ञाओं को वो पालन करता है.
This is gospel obedience.
ये है सुसमाचार पे आधारित आज्ञाकारिता.
Law and love do not contradict one another.
प्रेम और व्यवस्था एक दूसरे का विरोधाभास नहीं है.
Commandments are not against one another.
मसीह और आज्ञाएं एक दूसरे के विरोध में नहीं है. यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे.
Romans chapter 13.
रोमियो का 13 अध्याय.
What is the relationship of love and law?
वहां पे प्रेम का और व्यवस्था का क्या संबंध है? रोमियो का 13 अध्याय.
And verse 8.
और उसका 8वां पद.
Oh, nothing do anyone but to love one another.
परस्पर प्रेम के सिवाय किसी और के किसी विषय में ऋणी ना बनो.
Why?
क्यों?
Love is the fulfillment of the law.
क्योंकि जिसने प्रेम किया उसने व्यवस्था को पूरा किया.
For he who loves his neighbor has fulfilled the law.
क्योंकि उसने जिसने पड़ोसी से प्रेम किया उसने व्यवस्था को तो पूर्ण किया है.
Then he tells them the law.
और फिर उसके बाद उनको वो व्यवस्था बता देता है.
Not commit adultery.
और तुम्हें व्यभिचार नहीं करना चाहिए.
Not murder.
हत्या नहीं करना चाहिए.
Not covet.
चोरी नहीं करना.
If there's any other commandment, it's summed up in this one thing.
और यदि कोई और इसके अतिरिक्त आज्ञा है तो वो इसका सारांश इस कथा में पाया जाता है.
You will love your neighbor as yourself.
तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो.
Why is it important?
क्यों जरूरी है ये?
Verse 10.
दसवां पद.
One doesn't do wrong to a neighbor.
प्रेम पड़ोसी की बुराई नहीं करता है.
What's the conclusion?
और उसका अंत क्या है?
Love is the fulfillment of the law.
क्योंकि प्रेम करना व्यवस्था को पूरा करना है.
Love supplies the motivation.
प्रेम जो है हमारे लिए प्रेरणा को प्रस्तुत करता है.
The law provides the direction.
लेकिन व्यवस्था जो है हमारे दिशा को प्रस्तुत करता
है. Love motivates our obedience.
व्यवस्था जो है हमारे आज्ञाकारिता को प्रेरित करता है.
And law directs our obedience.
प्रेम हमारे व्यवस्था को उपलब्ध कराता है लेकिन व्यवस्था दिशा दिखाता है.
Are there any questions?
क्या प्रश्न है? कोई प्रश्न है आपके पास यहाँ पे इसके? क्या आप समझ रहे हम कहना क्या चाह रहे हैं?
Now listen carefully.
ध्यान से सुनिए इस बात को.
In justification,
धर्मी ठहरा दिए जाने के संबंध में,
law and grace are in conflict.
व्यवस्था और अनुग्रह एक दूसरे से लड़ रहे हैं.
In justification, the law can only condemn.
धर्मी ठहरा दिए जाने के संदर्भ में व्यवस्था केवल हमको दोषी ही ठहरा सकती है. सिर्फ यही उसका काम है.
And grace can pardon.
और ये अनुग्रह ही है जो हमको क्षमा प्रदान करा सकता है.
But in sanctification, law and grace are friends.
लेकिन शुद्धिकरण में व्यवस्था और अनुग्रह हमारे मित्र है.
In justification, they are enemies.
यद्यपि धर्मी ठहरा देने के मामले में वे दोनों दुश्मन विरोधी हैं.
The law is not evil.
व्यवस्था दुष्ट नहीं है.
The law is good.
व्यवस्था बहुत उत्तम है.
And it is holy and righteous.
और पवित्र और धर्मी है.
What's the problem?
लेकिन समस्या क्या है?
Sin.
वो पाप है. वो
Man's inability.
मनुष्य की असक्षमता.
He cannot keep the law.
वो व्यवस्था को पालन नहीं कर सकता है.
Christ came to keep the law.
यीशु मसीह इसलिए आगे की व्यवस्था का पालन करें.
When we're a new creation, he writes the law on our heart.
और जब हम नई सृष्टि बन जाते तो अपनी व्यवस्था को हमारे हृदय पे वो लिख देता मसीह.
Brother Andy, why are you saying this again and again and again?
और हो सकता है आप हमसे कहने लगे भाई एंडी आप क्यों इसी बात को बार 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 कह रहे हैं?
Because I've taught this for 40 years.
क्योंकि मैंने इस बात को पिछले 40 साल से सिखाया लोगों को.
I come back again and again to people.
और फिर मैं पलट करके वापस आता हूँ उनके पास बार बार.
And I ask them this question.
और फिर मैं उनसे ये प्रश्न पूछता हूँ.
What's the relationship of law and love?
और फिर मैं उनसे ये प्रश्न पूछता हूँ व्यवस्था और प्रेम का संबंध क्या है?
And they don't know.
और उनको नहीं मालूम होता उसका मतलब.
You must think.
आपको सोचने की जरूरत है.
Now in China, the education system does not teach people to think.
और चीन देश में जो वहाँ की शिक्षा प्रणाली है वो लोगों को सोचने पर बाध्य नहीं करती है.
They listen to the professor.
वो अपने शिक्षक की बातों को सुनते हैं.
They write it down.
और वो अपनी पुस्तक में लिख लेते हैं.
They go home and memorize it.
और अपने घर में जाते हैं और उसको मुखाग्र कर लेते हैं.
They go to take the test.
और वो जाते हैं अपना एग्जाम लेने के लिए. और जो रट लिया तो वो लड़ देते हैं वहाँ पे.
They never thought about it.
उन लोगों ने उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं कुछ.
Never learned it.
और कभी सीखा ही नहीं उसको.
They say, yes, I understand.
वो कहते हैं हाँ हम समझ गए.
Well, they don't really understand.
लेकिन वो समझते नहीं है.
They've not been taught to think.
क्योंकि उनको सोचने के लिए सिखाया नहीं गया.
If you're going to be a preacher, you've got to use your mind.
अगर आप एक प्रचारक बनना चाहते तो आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा.
You've got to think.
आपको सोचना पड़ेगा.
When you look at the Bible,
जब आप परमेश्वर वचन को देखते हैं,
you need to think.
आपको सोचने की आवश्यकता है.
You need to make connections.
आपको जोड़ देखने हैं.
You need to write conclusion.
और आपको उसके जो सारांश है उनको लिखना है.
We're trying to make this as plain as we can.
और हम इसको जितना सरल बना सकते हैं उसके बनाने की कोशिश कर रहे हैं.
Any question?
कोई प्रश्न है अब इसके बारे में? कोई प्रश्न किसी को? कोई प्रश्न समझ में आए सब?
So someone tells you that the believer should not look to law and commandment, he should only look to Christ, what should you say?
अगर कोई आपसे आ करके कहे कि एक विश्वासी को व्यवस्था और आज्ञाओं की ओर नहीं देखना चाहिए लेकिन सिर्फ यीशु मसीह की ओर देखना चाहिए तो आप उससे क्या कहेंगे?
Well, I'm looking to Christ.
तो आप उसे कहेंगे हाँ भाई मैं यीशु मसीह की ओर देख रहा हूँ, मैं यीशु मसीह की सुन रहा हूँ. और यीशु मसीह ने मुझसे ये कहा
me,
अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे.
क्राइस्ट इज नॉट इन कॉन्ट्रडिक्शन और कॉन्फ्लिक्ट विद इट्स कमांडमेंट.
यीशु मसीह अपनी आज्ञाओं के विपरीत या विरोधाभास में नहीं है.
सो वी लुक टू क्राइस्ट.
तो हम मसीह की ओर देखते हैं.
एंड वी रन द रेस.
और हम अपनी दौड़ दौड़ते हैं.
डाउन द पाथ ऑफ गॉड्स कमांडमेंट.
और परमेश्वर के आज्ञाओं के मार्ग पर हम दौड़ते हैं.
If we were just to look to Christ, there would only be one command in the New Testament.
अगर हम सिर्फ यीशु मसीह की ओर देखते तो सिर्फ नए नियम में सिर्फ एक ही आज्ञा होती. यीशु की ओर देखो.
Look to Christ.
यीशु की ओर देखो.
But the New Testament is full of dozens of commands.
लेकिन नए नियम दर्जनों आज्ञाओं से भरा हुआ है.
They are not to bind us.
वो इसलिए नहीं है कि हमको बांध दें.
They are gift from God.
लेकिन वो परमेश्वर की ओर से वरदान है हमारे लिए.
It tells us how to walk in the path of righteousness.
वो हमको बताता है कि धार्मिकता के मार्ग में हमको कैसे चलना है.
Now let me mention one other thing that is wrong thinking. In this regard.
मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ जो इस संदर्भ में गलत शिक्षा है या सोच है.
Many men say this.
बहुत सारे लोग इस तरह की बातें करते हैं,
when we sin,
जब हम पाप करते हैं
God doesn't see our sin.
तो परमेश्वर हमारे पापों को नहीं देखता है,
He doesn't see us.
वो हमको नहीं देखता है,
He sees Christ.
वो मसीह को देखता है.
We're covered with the righteousness of Christ.
हम मसीह के धार्मिकता से ढांप लिए गए हैं.
We have on a white robe of righteousness.
हमारे ऊपर एक धार्मिकता का सफेद चोखा है.
He doesn't see us.
वो हमको नहीं देखता है,
He sees Christ.
वो मसीह को देखता है.
Is that true?
क्या वो सही है?
Yes.
हाँ.
But listen carefully.
लेकिन ध्यान से इस बात को.
It's true in regard to our justification.
वो सही है लेकिन हमारे धर्मी ठहरा दिए जाने के संदर्भ में.
It is not true in regard to our sanctification.
हमारे शुद्धिकरण या पवित्रीकरण के मामले में वो सही नहीं है.
We are covered with the righteousness of Christ.
हम मसीह की धार्मिकता में ढांप लिए गए हैं.
He's taken away our guilt.
उसने हमारा दोष हमसे ले लिया है.
He's clothed us with the righteousness of Christ.
उसने हमको मसीह की धार्मिकता से ढांप दिया है.
So when God sees us,
जब मसीह हमको देखता है, परमेश्वर हमको देखता है,
He sees us in Christ.
तो वो हमको मसीह में होकर के देखता है.
Covered with the righteousness of Christ.
वो मसीह की धार्मिकता में ढांपे हुए देखता है हमको.
Not that we earned.
उसको हमने कमाया नहीं.
Not did we work for.
हमने उसके लिए काम नहीं किया.
Not did we bought.
हमने उसको खरीदा नहीं.
It's not our righteousness.
वो हमारी धार्मिकता नहीं है.
It's the righteousness of Christ.
वो मसीह की धार्मिकता है.
And it is transferred to our account.
और वो हमारे खाते में डाल दी जाती है.
So when we say he doesn't see our sin, we mean he doesn't see the guilt of our sin.
और तो जब हम कहते हैं कि वो हमारे पाप को नहीं देखता, तो हमारे कहने का ये मतलब है हमारे पाप के दोष को नहीं देखता है वो.
In justification, we're covered with the righteousness of Christ.
धर्मी ठहरा दिए जाने के मामले में हम मसीह से साथ ढांप दिए गए हैं. लेकिन इस बात को आप ध्यान सुनिए. और कुछ लोग ये सोचते हैं कि शुद्धिकरण में भी हमारी यही बात लागू होती है. मैंने पाप किया, मैंने नशा कर लिया, मैं मसीह की धार्मिकता से छिपा हुआ हूँ, परमेश्वर मेरी पाप को नहीं देखता है, मैंने व्यभिचार किया, परमेश्वर मेरे पाप को नहीं देखता है, मैं अपनी पत्नी को मारता हूँ, परमेश्वर मेरे पाप को नहीं देखता, क्योंकि हम मसीह से ढके हुए, वो मुझे नहीं देखता है, वो यीशु को देखता है. जब मैं पाप करता हूँ वो मुझको नहीं देखता है, इसी वो यीशु को देखता है.
Is that true?
क्या ये सही बात है?
The eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good.
परमेश्वर की आंखें हर जगह हैं, जो कि दुष्टता और भलाई को देख रही हैं.
Look in 2 Samuel.
दूसरे शमूएल को देखिए.
The very sad but famous example of David.
और यहाँ पे दाऊद का एक बहुत ही दुख भरा लेकिन बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण.
चैप्टर 11,
11 अध्याय.
वन ऑफ द सैडेस्ट चैप्टर्स इन द ओल्ड टेस्टामेंट.
पुराने नियम का एक सबसे बड़ा दुख भरा वाक्य.
Every time I read this chapter, it puts the fear of God in me.
जितनी बार मैं इस अध्याय को पढ़ता हूँ तो मेरे हृदय में वो परमेश्वर के भय को डाल देता है.
David had been greatly blessed of God.
दाऊद को परमेश्वर ने बहुत ही ज्यादा आशीषों से भर दिया था.
But David had become complacent and irresponsible.
लेकिन दाऊद जो है गैर जिम्मेदार और बिल्कुल आरामदेह हो गया था.
Verse 1.
पहला पद.
It was the spring when kings go out to war.
ये वर्ष के आरंभ का समय था जब राजा युद्ध करने के लिए निकला करते थे.
But what did David do?
लेकिन दाऊद क्या कर रहे हैं?
He stayed home.
वो अपने घर में बैठा हुआ
है. He sent someone else.
उसने किसी और को भेज दिया.
He was to fight the battles of the Lord.
उसको परमेश्वर के युद्ध को लड़ना चाहिए था.
He sent Joab and the army.
लेकिन उसने योआब और उसके सेना को भेज दिया.
And when you're not doing what you're supposed to be doing or what you're called to be doing, you may get in trouble.
जब आपको जो काम बुलाया गया है करने के लिए जब आप उसको नहीं करते हैं या जो करना चाहिए था तो हो सकता है कि आप समस्या में पड़ जाएं.
You know the story.
आप जानते हैं इस कहानी को.
Got up from an afternoon nap.
और वो दिन की नींद से उठा एक बार.
Walking on the roof.
और छत पे चल रहा था वो.
One look with his eye.
अपनी एक आंख से देखा उसने.
He looked again.
उसने फिर से देखा उसको.
Temptation entered his heart.
और उसके हृदय में परीक्षा घुस गई.
One look.
एक एक बार देखा उसने.
And he slept with her.
और फिर वो उसके साथ वो सोया.
He committed adultery.
उसने व्यभिचार किया.
No one knew it.
किसी कोई भी नहीं आता था इस बात को.
He murdered her husband.
फिर उसके बाद उसने उसके पति का भी हत्या करवा दिया.
No one knew it.
कोई भी नहीं आता था उस बात
He
को.
Covered his sin.
उसने अपने पाप को ढांप लिया.
God didn't see his sin.
और परमेश्वर ने उसके पाप को नहीं देखा.
He was covered with Christ.
क्योंकि वो मसीह से ढका हुआ था.
Look at the last verse, 27.
आज यहाँ पे 11 अध्याय के 27 पद को देखिए.
When the time of mourning was over, David sent and brought her to his house, and she became his wife, and she bore him a son.
शोक अवधि पूर्ण होने पर दाऊद ने उसको अपने भवन में बुला लिया और उसकी पत्नी हो गई. फिर उसने उसके पुत्र को जन्म दिया.
And they all live happily ever after.
और फिर उसके बाद वे सबके सब बड़े आराम से जिए.
What does it say?
कैसी लिखा वहाँ पे? क्या लिखा वहाँ पे?
But the thing that David has done was evil in the sight of the Lord.
परंतु जो काम दाऊद ने किया था वो यहोवा की दृष्टि में बुरा था.
He saw his sin.
उसने उसके पाप को देखा.
He saw his adultery.
उसने उसके व्यभिचार को देखा.
He saw his murder.
उसने उसके हत्या को देखा.
He saw him cover his sin.
उसने उसके पाप को ढांपते हुए देखा.
And David was a forgiven man.
और दाऊद को क्षमा मिल गई.
He was in the Messiah.
वो मसीहा में था.
What does the Bible say?
लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है?
God saw.
परमेश्वर ने देखा उस बात को.
God wasn't happy.
परमेश्वर प्रसन्न नहीं था उस बात से.
It was evil in the sight of God.
क्योंकि परमेश्वर की आंखों में वो दुष्ट बात थी.
Listen carefully.
ध्यान सुनिए इस बात को.
In our justification, we're covered with the righteousness of Christ.
हमारे धर्मी ठहरा दिए जाने के मामले में हम मसीह के द्वारा ढांप ले गए.
In our sanctification, we must be covered with our own righteousness.
हमारे शुद्धिकरण में हमें स्वयं की धार्मिकता से ढके जाने की आवश्यकता है.
And when we sin,
और जब हम पाप करते हैं,
even though our guilt is forgiven,
यद्यपि हमारे पाप क्षमा कर दिए गए हैं,
God sees our sin.
लेकिन परमेश्वर हमारे पाप को देखता है.
And he is not pleased.
और वो प्रसन्न नहीं हमसे.
And there will be consequences.
और उसके परिणाम होंगे.
Look at chapter 12.
और उसका 12वां अध्याय देखिए.
God sends Nathan the prophet.
परमेश्वर ने नाथान उस भविष्यवक्ता को भेजा.
Verse 7.
उसका 7वां पद.
Nathan said, "You are the man."
नाथान ने कहा कि तुम वो व्यक्ति हो.
God said, "I anointed you king over Israel. I delivered you from Saul."
परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुमको इज़राइल का राजा नियुक्त किया है और शाऊल के ऊपर भेजा है.
I gave you your master's house and your master's wives into your care.
मैंने तेरे स्वामी का घर और तेरे स्वामी की पत्नी को तेरे लिए दे दिया है.
I gave you the house of Israel and Judah.
मैंने तुम्हें इज़राइल और यहूदा घराना भी दे दिया.
If that had been too little, I would have given you more.
यदि बहुत थोड़ा था तो मैं तो इनके समान और भी तुझे दे देता.
Why have you despised the word of the Lord by doing evil in His sight?
तुमने यहोवा की आज्ञा जानकर ये काम किया क्योंकि उसकी दृष्टि में बुरा था.
You have killed Uriah with a sword.
तुमने हेती यूरिया को तलवार से मरवा डाला.
You have taken his own wife.
तुमने उसकी पत्नी को अपनी पत्नी होने के लिए ले लिया.
You killed him by the swords of Ammon.
और उसको अमोनियों की तलवार से मरवा दिया है.
Therefore,
इसलिए
your sins are forgiven and we'll forget the whole thing.
तुम्हारे पाप क्षमा हो गए और जो कुछ भी हुआ उसको हम लोग भूल जाएंगे.
That what he said?
क्या ये कहा परमेश्वर ने?
Therefore,
इसलिए
the sword will never depart from your house.
अब तलवार तेरे घराने से कभी दूर नहीं होगी.
You have despised me and taken the wife of Uriah the Hittite.
क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जाना और हित्ती उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी होने के लिए रख लिया है.
I will raise up evil from your own household.
देख मैं तेरे घराने से तेरे विरुद्ध बुराई उत्पन्न करूंगा.
I will take your own wives and give them to your companion and he will lie with them in broad daylight.
और मैं यहां तक तेरी आंखों के सामने तेरी पत्नियों को तेरे साथी को दे दूंगा वो दिन दोपहर में तेरी पत्नी के साथ सोएगा.
You did it in secret but I will do this before all of Israel.
तूने ये काम गुप्त रीति से किया परंतु मैं ये काम संपूर्ण घराने के सामने दिन दोपहर करवाऊंगा.
Verse 13.
13 पद देखिए.
David confessed his sin.
और दाऊद ने अपने पापों को पश्चाताप कर लिया.
David repented of his sin.
दाऊद ने पश्चाताप के लिए मान लिया.
What did Nathan say?
और फिर नाथान ने क्या कहा उसे?
The Lord has taken away your sin.
परमेश्वर ने तेरे पापों को दूर कर दिया है.
Let's just forget the whole thing.
इसलिए चाहो हम लोग सब सारी बातों को भूल जाएं.
Is that what he said?
क्या यही कहता है नाथान यहाँ पे?
The child that is born to you shall surely die.
कि जो तुम्हारा पुत्र उत्पन्न होगा वो निश्चित ही मर जाएगा.
Now listen carefully.
ध्यान से इस बात को.
In our justification, God does not see the guilt of our sin.
हमारे धर्मी ठहराए जाने के मामले में परमेश्वर हमारे पाप को नहीं देखता है, हमें दोष को नहीं देखता है.
In Christ.
क्योंकि हम मसीह में हैं.
United to Christ.
क्योंकि हम मसीह से जुड़ गए हैं.
Clothed with Christ.
क्योंकि हम मसीह से पहने हुए हैं.
He's taken away our filthy garments.
उसने हमारे गंदे कपड़ों को ले लिया है.
He's given us a robe of righteousness.
उसने हमें धार्मिकता के वस्त्र दे दिए हैं.
In our justification, it's not our righteousness.
हम धर्मी ठहरा दिए जाने माने में हमारी वो धार्मिकता नहीं है.
It is Christ's righteousness.
वो तो मसीह की धार्मिकता है.
And he doesn't see our sin.
और वो हमारे पापों को नहीं देखता है.
As to its guilt.
और हमारे दोष के संबंध में. लेकिन हमारे संदर्भ हमारे पवित्रीकरण में ये हमारी धार्मिकता है परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा हमें काम किया जाता है और परमेश्वर की व्यवस्था के प्रति आज्ञाकारिता में परमेश्वर के प्रेम से प्रेरित होकर के और जब हम प्रेम करते हम पाप करते हैं परमेश्वर देखता है.
Doesn't see
Christ. मसीह को नहीं देखता है.
He sees you.
वो आपको देखता है.
In our sanctification,
हमारे शुद्धिकरण के मामले में
sin,
जब हम पाप करते हैं
he sees our sin,
वो हमारे पापों को देखता है.
And he's not pleased with our sin,
वो हमारे पापों से प्रसन्न नहीं होता है.
He will forgive us of our sin,
वो हमारे पापों को क्षमा करेगा.
If we confess our sin,
अगर हम अपने पापों को अंगीकार करेंगे
he will forgive us of our sin,
वो हमारे पापों को क्षमा करेगा.
But listen carefully,
लेकिन ध्यान सुनिए इस बात को.
Sin is forgiven, it has consequences.
यद्यपि वो पाप क्षमा कर दिए गए हैं लेकिन उन पाप के परिणाम अवश्य होंगे.
I have a friend.
मेरे पास एक मित्र है.
He was my brother-in-law.
वो मेरा दामाद मेरा साला था.
My wife's sister.
उसने मेरे पत्नी की बहन से शादी किया था.
He had three sons.
उसके पास तीन बेटे थे.
But he fell into sin.
लेकिन वो पाप में गिर गया.
He began to chase the prostitutes.
वो वैश्याओं के पीछे जाने लगा.
And he did this for 7 years.
उसने 7 साल तक लगभग ये किया.
His wife divorced him.
उसकी पत्नी ने उसको छोड़ दिया.
His children forsook him.
उसके बच्चों ने उसको छोड़ दिया.
He repented.
उसने पश्चाताप किया.
God restored him.
परमेश्वर ने उसको पुनः स्थापित किया.
He married another woman.
उसने दूसरी स्त्री से शादी कर लिया.
He had three more sons.
उसके पास तीन और बच्चे हुए.
Now he's walking with the Lord.
और अब वो प्रभु के साथ चल रहा है.
But listen carefully.
लेकिन ध्यान सुनिए इस बात को.
The consequences of his sin were not erased.
उसके पापों के परिणाम मिट नहीं गए थे.
He lost his wife.
उसने अपनी पत्नी खो दिया.
He lost his children.
उसने अपने बच्चे खो दिए.
He lost his reputation.
उसने अपना नाम खो दिया.
He fell under the discipline of God.
वो परमेश्वर के अनुशासन के अधीन गिरा.
Sin has consequences.
पाप के परिणाम होते हैं.
So when you hear someone preach this,
अगर आप किसी को सुनते हैं ये प्रचार करते हुए
God doesn't see your sin.
परमेश्वर आपके पापों को नहीं देखता है.
He sees Christ.
वो मसीह को देखता है.
You must explain what that means and what that doesn't mean.
तो आपको उसको समझाने की आवश्यकता है कि उसका क्या मतलब है और उसका क्या मतलब नहीं है.
The antinomian says this.
जो गैर व्यवस्थावाद व्यक्ति है वो ये कहता है.
God doesn't see your sin.
परमेश्वर आपके पापों को नहीं देखता है.
No matter what you do.
और चाहे आप जो कुछ भी करें.
He doesn't see your sin.
वो आपके पापों को नहीं देखता है.
You understand what we're saying?
आप समझ रहे हैं हम कहना क्या चाह रहे हैं? समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं?
The antinomian fails to distinguish between justification and sanctification.
जो गैर व्यवस्थावादी व्यक्ति है वो धर्मी ठहरा दिए जाने मामले में और पवित्रीकरण के मामले को भिन्नता लाने में समझ नहीं पाता है वो.
He fails to distinguish between Christ's righteousness and our own righteousness.
वो मसीह की धार्मिकता और हमारी स्वयं की धार्मिकता के बीच में भेद नहीं कर पाता है.
God doesn't see the guilt of our sin.
परमेश्वर हाँ हमारे पापों के दोष को तो नहीं देखता है.
God certainly sees the commitment of our sin.
लेकिन परमेश्वर निश्चित तौर पे हमारे पापों के जो हम करते हैं उसको अवश्य देखता है.
And he loves us and he disciplines us.
और वो हमसे प्रेम करता है, वो हमको अनुशासित करता है.
And he restores us.
और वो हमको पुनः स्थापित करता है.
The antinomian exalts in free grace.
जो गैर व्यवस्थावादी व्यक्ति है वो स्वतंत्र मुक्त मुफ्त अनुग्रह पे बहुत ही ध्यान देता है.
We're saved by the grace of God.
वो कहता है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा बचाए गए, हम परमेश्वर के हम सामर्थ्य के द्वारा मजबूत किए गए, हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा बचाए जाते हैं, हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा माफ कर दिए गए. और ये सारी बातें सत्य हैं.
But they also say this.
लेकिन वो लोग ये भी कहते हैं,
Therefore we can do what we want.
इसलिए हम जो चाहे वो कर सकते हैं. बल्कि वो ये कहते हैं कि जितना अधिक हम प्रचार करें उतना अधिक परमेश्वर को महिमा मिलेगी उससे.
Listen carefully.
लेकिन ध्यान से इस बात को.
What did Paul tell Titus?
पौलुस ने क्या कहा तीतुस से?
What does the grace of God do?
और परमेश्वर का अनुग्रह क्या करता है हमको?
Chapter 2.
दूसरा अध्याय.
It saves us.
वो हमको बचाता है.
It sanctifies us.
वो हमको शुद्ध करता है.
But it doesn't leave us alone.
लेकिन वो हमको अकेले नहीं छोड़ता है.
Titus chapter 2.
तीतुस उसका दूसरा अध्याय.
Titus
2, verse 11. Titus 2:11.
The grace of God has appeared, bringing salvation to all men.
क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तो सब मनुष्य के उद्धार के लिए प्रकट हुआ है.
And what does that grace do?
और वो अनुग्रह क्या करता है फिलिप भाई?
Verse 12.
12 पद.
It teaches us.
वो हमें सिखाता है.
Doesn't just save us.
हमें से बचाता नहीं है.
Doesn't just forgive us.
हमें से क्षमा नहीं कर देता है.
Doesn't just justify us.
हमें से धर्मी नहीं ठहराता है.
It teaches us.
लेकिन हमें सिखाता है.
And what does it teach us?
और क्या सिखाता है हमें?
It teaches us to avoid certain things and to do certain things.
वो हमें सिखाता है कुछ चीजों को ना करने के लिए और कुछ चीजों को करने के लिए.
Verse 12.
12 पद.
To deny ungodliness and worldly desire.
कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं का इनकार करें.
It tells us and teaches us to stay away from these things.
वो हमको बताता है और सिखाता है कि हम इन चीजों से दूर रहें.
Then it teaches us to live in a certain way.
और फिर वो हमको सिखाता है कि हम कुछ कुछ मायने में कुछ तरह से जीवन व्यतीत करें.
Doesn't leave us alone.
हमें अकेले नहीं छोड़ देता है.
Don't say do whatever you want.
वो ये नहीं कहता कि जो चाहो वो करो.
It teaches us to live in three ways.
वो कहते वो हमको तीन तरीके से जीने के लिए सिखाता है.
Verse 12.
ध्यान दिए 12 पद को.
Soberly, righteously, and godly in the present age.
वो कहता है कि संयम के साथ, धार्मिकता के साथ और भक्ति के साथ इस समय इस जीवन में युग में जीवन बिताएं.
What do those words mean?
ये सारे शब्दों का मतलब क्या है?
Number one.
पहली बात.
Soberly.
संयम के साथ.
That word means self-control.
इसका ये मतलब है स्वयं पे नियंत्रण रखना.
And it refers to controlling our own bodies and desires.
और इसका ये मतलब है कि हमारे स्वयं के शरीरों और उनकी इच्छाओं पे नियंत्रण रखना.
Number two,
दूसरी बात.
Righteousness.
धार्मिकता.
What does that mean?
उसका मतलब क्या हुआ?
It means to live according to a standard.
और इसका ये मतलब हुआ कि एक स्तर के अनुसार जीवन को व्यतीत करना.
What is righteousness?
क्या है धार्मिकता?
It means to measure up to a standard.
इसका ये मतलब है कि एक स्तर के अनुसार से जीवन व्यतीत करना.
There is a legal righteousness, there is a practical righteousness.
एक व्यवहारिक धार्मिकता है और एक वैधानिक या कानूनी धार्मिकता है.
The legal righteousness is Jesus Christ.
जो कानूनी या वैधानिक धार्मिकता है वो यीशु मसीह है.
He obeyed the law of God.
उसने परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा किया.
Practical righteousness is our own.
जो व्यवहारिक धार्मिकता है वो हमारी स्वयं की है.
We obey the law of God.
हम परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करते हैं.
For our salvation.
अपने उद्धार के लिए नहीं.
But for our sanctification.
लेकिन हमारे शुद्धिकरण के लिए.
Who teaches us this?
कौन सिखाता है हमको ये? परमेश्वर सिखाता है हमको ये.
By the grace of God.
परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा.
Self-control.
स्वयं पे नियंत्रण करना.
Obedience to law.
व्यवस्था के प्रति आज्ञाकारिता.
Number three.
और तीसरी बात.
Godly.
और ईश्वर भक्ति.
What does that word mean?
इसका मतलब क्या है धार्मिकता का मतलब?
In the Greek language.
जो यूनानी भाषा है.
Made up of two words.
दो शब्दों से मिला हुआ है.
One word has the idea of fear.
और एक शब्द का मतलब है भय.
The other word has the idea of good or positive.
और दूसरे शब्द में ये विचार है बढ़िया उत्तम या फिर सकारात्मक.
It's a good fear.
ये एक सकारात्मक भय है.
Not the fear of a slave.
ये एक दास का भय नहीं है.
But the fear of a son.
लेकिन ये एक पुत्र का भय है.
It means to live in the fear of God.
इसका ये मतलब है कि परमेश्वर के भय के अनुसार जीवन व्यतीत करना.
And what produces the fear of God?
और क्या चीज है जो हमारे अंदर परमेश्वर के भय को उत्पन्न करता है?
The knowledge of God.
परमेश्वर का ज्ञान.
When a man has been touched by the grace of God.
जब एक व्यक्ति परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा छू जाता है.
And grace forgives him.
वो अनुग्रह उसको माफ करता है.
Justifies him.
उसको धर्मी ठहराता है.
Freely pardons him.
उसको पूरी मुफ्त आजादी के साथ मुक्ति के साथ स्वतंत्र माफ कर देता है.
Then it teaches him.
फिर उसका उसको सिखाता है.
In his heart.
उसके हृदय में.
By the Holy Spirit.
पवित्र आत्मा के द्वारा.
To deny certain things.
कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हमें नकारना है.
And to live soberly, righteously in God.
और फिर हमको संयमता के साथ धार्मिकता के साथ और भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करना है.
So when someone says this,
तो फिर अगर आपसे कोई कुछ ये कहता है
Love God and do what you please.
परमेश्वर से प्रेम करो जो चाहो वो करो.
Is that right?
क्या वो सही है?
Love God and do what pleases Him.
परमेश्वर से प्रेम करो और जो परमेश्वर को प्रसन्न है उसके अनुसार जीवन व्यतीत करो अपना.
And what pleases Him.
और क्या चीज है जो परमेश्वर को प्रसन्न करती है?
Obedience to His command.
उसकी आज्ञाओं के प्रति आज्ञाकारिकता.
Any questions?
कोई प्रश्न है आपके पास? अंकित क्या बोल रहा है? हाँ पूछो पूछो. कोई प्रश्न किसी के पास कोई प्रश्न है? हाँ भैया ठीक है भैया बोलिए. Talking about David,
yes.
If the consequences of David's sins were so big, then how can we say that his sins were forgiven?
Because Nathan said his sins were forgiven. Number one.
पहली बात हम इसलिए कह सकते हैं कि दाऊद के पाप क्षमा हुए क्योंकि नाथान नबी ने उससे कहा कि परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे पाप क्षमा कर दिए पहली बार.
And when he prayed Psalm 51.
और जब फिर उसके बाद उसने भजन 51 को की प्रार्थना की.
And when he prayed Psalm 32.
और उसके बाद जब उसने भजन 32 की प्रार्थना की.
What did he say?
तो भजनकार ने क्या कहा? दाऊद ने क्या कहा?
Blessed is the man whose sins are forgiven, whose transgressions are covered.
और दाऊद कहता है धन्य है वो व्यक्ति जिसके पाप क्षमा हुए हैं और जिसके अपराध ढाके गए हैं.
We must be able to distinguish between the guilt of sin and the consequences of sin.
हमें और आपको इन दो चीजों में फर्क करने के सीखना है. पाप का दोष और पाप के परिणाम. ठीक है, पाप के दोष और पाप के परिणाम में भिन्नता लाना हमें सीखना कि ये दोनों अलग चीजें हैं.
And we must be able to distinguish between the punishment for our sins or the discipline for our sins.
और हमें इन दो चीजों में फर्क लाना भी सीखना है कि हमारे दो चीजें, एक चीज है पापों के लिए दंड, पापों के लिए सजा और पापों की वजह से अनुशासन. दो अलग चीजें, पापों के लिए दंड या सजा या पापों के लिए अनुशासन, ये दो अलग चीजें हैं.
The guilt of our sin was punished on the cross.
हमारे पापों का दंड क्रूस पे उसकी सजा हो गई.
The consequences of our sin are disciplined in our own life.
लेकिन हमारे स्वयं के जीवन में हमारे पापों का परिणाम हमारे जीवन में ही होता है.
God can forgive a man of the guilt of his sin, but that doesn't mean he's going to remove the consequences of his sin.
परमेश्वर किसी व्यक्ति के पापों का दंड मिटा सकता है, क्षमा कर सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि परमेश्वर उसके पापों का परिणाम प्रतिफल हटा देगा.
Nathan said, "Your God, the Lord says, your sins are forgiven."
तो नाथान कहता है कि परमेश्वर यहोवा कहते हैं कि तुम्हारे पाप जो है क्षमा हो गए हैं.
Psalm 32.
भजन 32.
What did David pray?
दाऊद ने क्या प्रार्थना की वहां पे?
My sins are forgiven.
मेरे पाप क्षमा हो गए हैं. लेकिन फिर भी अभी भी मैं उन अपने पापों के परिणाम को सह रहा हूं अभी भी.
Now, this is a biblical principle.
ये जो है एक बाइबल पर आधारित सिद्धांत है.
Do not be deceived.
धोखा मत खाइए.
God is not mocked.
परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता.
Whatever a man sows, that he will reap.
जो कुछ भी एक व्यक्ति बोएगा उसको तो वो कटनी काटेगा ही काटेगा.
Your sin may be forgiven, but you will still reap the consequences of those sins.
हो सकता है आपके पाप क्षमा हो जाए लेकिन फिर भी पाप के प्रतिफल या परिणाम आपको तो भोगने ही पड़ेंगे. So their problem is, if we still have to face the consequences, then where is the forgiveness? How come there's consequences in their mind, there should be no consequences if there is forgiveness. Forgiveness should mean clean slate.
Can I spend
the last
decision?
Yes.
हाँ ठीक है. एक उदाहरण के द्वारा अंकल जी आपको समझाने की कोशिश करेंगे.
आपका बच्चा है, आपका बेटा है, आपका बेटा आपके पीछे पड़ता है, तो मुझे वापस साइकिल दीजिए, मैं साइकिल चलाऊंगा. आप उसको मना करते हैं कि नहीं नहीं, तुम अभी साइकिल नहीं चलाओ, तुम गिर जाओगे, चोट लग जाएगी.
Your father agree with this?
Yeah.
जिद करता है और साइकिल लेकर वहां जाता है, गिर जाता है, उसका हाथ टूट जाता है.
Just give an example. You have a child who wants to go and ride on a ride, and you tell him not to go. He doesn't listen to you. He goes out. He falls. He breaks his arm. He comes back, asks forgiveness. You forgive him, but he has to bear the pain.
Aaya? Kabhi bhi nahi aaya. Haath toota tha sun. Haath toota tha sun. हाँ नहीं नहीं आगे ना नहीं समझे तो अंकल से मिल लीजिएगा.
God as a judge forgives us the guilt of our sin.
परमेश्वर एक न्यायाधीश है, न्याय होने के नाते हमारे पापों का दोष माफ कर देता है. ठीक है.
Because of the sacrifice of Christ.
और वो हमारे पापों का दोष यीशु मसीह के बलिदान की वजह से माफ कर देता है.
But God as a loving father allows us to experience the consequences of our sin.
लेकिन परमेश्वर हमारा एक प्रेमी पिता होने के नाते हमें हमारे पापों के परिणामों को भुगतने देता है.
To teach us and to correct us.
हमें सिखाने के लिए और हमें सुधारने के लिए.
God is judge, God as father.
परमेश्वर एक न्यायी न्यायाधीश है और परमेश्वर पिता भी है. दो चीजें हैं ना परमेश्वर के बारे में.
When we confess our sin, he forgives the guilt of our sin because of Jesus Christ.
जब हम अपने पापों को अंगीकार करते तो हमारे दोष को क्षमा कर देता है यीशु मसीह की वजह से.
But as a loving father, he allows us to experience the pain and the consequence of our sin.
लेकिन एक प्रेमी पिता होने के नाते वो हमको हमारे पापों के परिणामों को भुगतने देता है और जो दर्द होता है उसको भुगतने देता है.
That doesn't mean our sin is not forgiven.
इसका ये मतलब नहीं कि हमारे पाप क्षमा नहीं हुए हैं. पापों के परिणाम भुगतने का यह मतलब नहीं कि हमारे पाप क्षमा नहीं हुए हैं, लेकिन इसका यह मतलब कि वो हमारा पिता है और वो हमको ताड़ना देकर के हमें सुधारने की सिखाने की कोशिश कर रहा है.
Hebrews chapter 12.
इब्रानियों उसका 12 अध्याय.
Very familiar passage.
बहुत ही जाना पहचाना स्थल है ये.
The discipline of a loving father.
एक पिता का प्रेमी अनुशासन.
Verse 5.
पांचवा पद.
Do not regard lightly the discipline of the Lord.
तुम परमेश्वर के उपदेश को प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना समझो.
Nor faint when you are reproved by him.
और ना जब वो तुझे झिड़के तो हताश ना होना.
God loves us.
परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है.
He disciplines us.
लेकिन वो हमको ताड़ना भी देता है.
There are two wrong responses to discipline.
और जब परमेश्वर हमको ताड़ना देता है अनुशासित करता है तो हम दो गलत प्रत्युत्तर दे सकते हैं.
Verse 5.
पांचवा पद.
Do not regard lightly the discipline of the Lord.
हम परमेश्वर की ताड़ना को हो सकता है हल्का समझ सकते हैं.
It's no big problem.
तो हम कह सकते हैं अरे कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं
है.
परमेश्वर फिर भी हमसे प्रेम करता है.
No matter what he did to me.
कोई फर्क नहीं पड़ता है जो परमेश्वर ने मुझसे किया. ये कोई बड़ी बात नहीं है.
That's the wrong response.
और ये एक गलत प्रत्युत्तर है.
Second wrong response.
और एक दूसरा गलत प्रत्युत्तर.
Don't faint when you are reproved by him.
और जब परमेश्वर तुमको ताड़ना देता है तो तुम होश न खो.
God doesn't love me.
हताश ना हो तुम. ये मुझे परमेश्वर से प्रेम नहीं करता है. परमेश्वर मुझको अनुशासित कर रहा है.
I can't take it.
हम मैं ले नहीं सकता इसको.
Two wrong responses.
ये दो गलत प्रत्युत्तर हैं.
Verse 6.
और छठा पद.
Why does God discipline us?
क्यों परमेश्वर हमको ताड़ना देता है?
Because he loves us.
क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है.
Verse 7.
सातवा पद.
God deals with us with sons.
वो हमसे इस तरह से व्यवहार करता है जैसे कि हम उसके पुत्र हों.
If you're not having discipline, you are not his true children.
अगर हमारे पास अनुशासन नहीं हो रहा है तो हम उसके सच्चे संतान नहीं हैं.
Why does he discipline us?
क्यों वो हमें अनुशासित करता है?
Verse 10.
और दसवां पद.
For our own good.
हमारे स्वयं की भलाई के लिए.
And we might share his holiness.
ताकि हम उसकी पवित्रता में शामिल हो जाएं.
Verse 11.
11 पद.
All discipline for the moment seems not to be joyful but sorrowful.
उस सब प्रकार की ताड़ना को समय के लिए सुखदायी नहीं परंतु दुखदायी प्रतीत होती है.
But if you're trained by it, afterwards it yields the peaceful fruit of righteousness.
लेकिन अगर तुम इसके द्वारा प्रशिक्षित हो चुके हो तो उन्हें बाद में धार्मिकता शांतिदायक फल प्राप्त होता है.
Now there's two kinds of discipline.
और दो तरह के अनुशासन होते हैं.
There's instructive discipline and corrective discipline.
एक सिखाने निर्देश देने वाला अनुशासन होता है और एक सुधारने वाला अनुशासन होता है.
Sometimes God allows us to get in difficult circumstances.
कभी कभी परमेश्वर हमको मुश्किल परिस्थितियों में पढ़ने देता है.
Not because of our sin,
इसलिए नहीं क्योंकि हमने पाप किया है,
but because he wants to train us.
लेकिन इसलिए क्योंकि वो हमको सिखाना चाहता है, प्रशिक्षित करना चाहता है. वो हमको और भी परिपक्व करना चाहता है.
He wants to increase our faith.
वो हमारे विश्वास को बढ़ाना चाहता है.
Not because we've sinned,
इसलिए नहीं क्योंकि हमने पाप किया है,
but because he wants to teach us.
लेकिन इसलिए क्योंकि वो हमको शिक्षा देना चाहता है. और एक और तरह का अनुशासन है और वो है सुधारने वाला अनुशासन. क्योंकि हमने पाप किया वो हमको सुधारना चाहता है. हम क्योंकि रास्ते से हट गए हैं वो हमको उठाता है वापस मार्ग में रख देता है. और कभी कभी वो हमें छड़ी भी लगाता है. क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है. वो हमें हमारे पापों के दोष की वजह से हमको दंडित नहीं कर रहा है. वो हमको इसलिए अनुशासित कर रहा है ताकि वो हमको हमारे पापों से शुद्ध कर दे. क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है.
So the guilt of sin and the consequence of sin are not the same.
तो पापों का दोष और पापों का परिणाम दोनों एक ही चीज नहीं है. ठीक है, पापों का दोष और पापों का प्रतिफल दोनों एक चीज नहीं है. दोनों अलग अलग चीज
है.
आप इसी जीवन में पापों के परिणाम को भोगेंगे.
But you will never experience the punishment for the guilt of your sin in the life to come.
लेकिन आपने पापों के दोष के दंड आने वाले जीवन में कभी भी उसको नहीं भोगेंगे.
Judgment begins with the house of God.
परमेश्वर का न्याय परमेश्वर के घर से आरंभ हो जाता है.
Not a judgment for salvation.
ये उद्धार के लिए न्याय नहीं.
But a loving discipline for our own righteousness.
लेकिन हमारे स्वयं की धार्मिकता के लिए एक प्रेम भरा अनुशासन.
Now listen carefully.
ध्यान सुन इस बात को.
If someone teaches you this,
अगर आपको कोई ये बात सिखाता है.
When you sin,
जब आप पाप करते हैं.
God doesn't see your sin.
परमेश्वर आपके पापों को नहीं देखता है.
God doesn't change in his attitude to you.
परमेश्वर आपके प्रति अपने व्यवहार में बिल्कुल बदलता
no
नहीं है.
do, he's always happy with you.
कोई फर्क नहीं पड़ता है चाहे आप जो भी करें वो हम आपसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं.
Sin will do you no harm.
पाप आपको नुकसान नहीं पहुंचाता है.
Obedience will do you no good.
आगे कारिकता आपको कुछ खराब नहीं करेगी.
We're under grace.
हम तो अनुग्रह के भीतर हैं.
When you hear that,
जब आप सुनते इस बात को
You need to be alert.
आपको चौकन्ने रहने की जरूरत है.
Why?
Kyun?
Because there is no contradiction between love and law.
Kyunki prem aur vyavastha ke beech mein koi bhi virodhabhas nahi hai.
There is no contradiction between Christ and his commandments.
Kyunki masih aur uski aagyaon ke beech mein koi bhi virodhabhas nahi hai.
There is no contradiction between the love of God and the discipline of God.
Aur parmeshwar ke prem mein aur parmeshwar ke anushasan ke beech mein koi bhi virodhabhas nahi hai.
God's discipline means that he loves you.
परमेश्वर का अनुशासन का यह मतलब है कि वो आपसे प्रेम करता है.
It doesn't mean that he doesn't love you.
इसका यह मतलब नहीं कि वो आपसे नहीं प्रेम करता है.
Means that he does love you.
लेकिन इसका मतलब यह है कि वो आपसे वास्तव में प्रेम करता है.
So we're talking about the Christian's relationship to the law of God.
तो हम मसीह के परमेश्वर की व्यवस्था के संबंध के बारे में बात कर रहे हैं.
This is both theological and practical.
ये दोनों धर्मशास्त्र विज्ञान पर आधारित है और व्यवहारिक भी है.
All right living must be rooted in right doctrine.
हर एक सही जीवन जीने की शैली सच्ची सही सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए.
Some people say this.
कुछ लोग ये कहते हैं.
Well, I don't preach doctrine.
मैं तो सिद्धांतों को प्रचार नहीं करता. सिद्धांतों से विघटन होता है. हम तो केवल यीशु से प्रेम करते हैं. हम तो सिर्फ यीशु से प्रेम करते हैं. हम तो सिर्फ यीशु से प्रेम करते हैं. एक दूसरे से प्रेम करते हैं और सब कुछ बढ़िया होगा.
What does Paul say?
Paulus क्या कहता है?
All scripture is given by inspiration of God.
हर संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा रचा गया है.
And is profitable.
और वो हमारे लिए उपयोगी है.
And what's the first thing it's profitable for?
और सबसे पहली चीज किस लिए उपयोगी है?
Doctrine.
सिद्धांतों के लिए, शिक्षा के लिए.
The Bible is full of doctrine.
परमेश्वर के वचन सिद्धांतों से भरा हुआ है.
If your doctrine is wrong, your life may be wrong.
अगर आपका सिद्धांत गलत है तो आपका जीवन भी गलत हो सकता है.
You don't understand the relationship of the law and the gospel, your life may be wrong.
अगर आप व्यवस्था और सुसमाचार के बीच के संबंध को नहीं समझते तो आपका जीवन भी गलत हो सकता है.
You could be preaching legalism.
हो सकता है आप व्यवस्थावाद को प्रचार कर रहे हो.
You could be preaching antinomianism.
हो सकता है आप गैर व्यवस्थावाद को प्रचार कर रहे हो.
But God is a God of unity and order.
लेकिन परमेश्वर व्यवस्था एकता और ऑर्डर का परमेश्वर है.
And his word does not contradict itself.
और उसका वचन एक दूसरे से विरोधाभास नहीं करता है.
Listen carefully.
ध्यान से इस बात को.
If you sin,
अगर आप पाप करेंगे,
God sees you.
परमेश्वर आपको देखता है.
Do we understand that?
हम समझ रहे हैं इस बात को कि नहीं समझ रहे हैं?
Now I'm not talking about our ordinary struggles that we all have.
हम अपने आम संघर्षों की बात नहीं कर रहे हैं जो हम लोग में होती है जीवन में.
Sometimes our hearts are weak.
कभी कभी हमारे हृदय जो है कमजोर होते हैं.
Sometimes we have no desire to read the word.
कभी कभी हमारे अंदर परमेश्वर के वचन को पढ़ने की कोई भी इच्छा नहीं होती है.
Sometimes we become lazy and sluggish.
कभी कभी हम लोग कमजोर हो जाते हैं और आलसी हो जाते हैं.
But we want to seek the Lord.
लेकिन हम परमेश्वर को ढूंढना चाहते हैं.
And we want to read the Bible.
और हम परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहते हैं.
But if in your life there's a hidden sin.
लेकिन अगर आपके जीवन में कोई छुपा हुआ पाप है.
Nobody knows it.
और कोई भी नहीं जानता उस बात को.
You think you've hidden it from everyone.
और आप ये सोचते हैं कि सबने आपसे छिपा लिया उस बात को.
No one else sees it.
कोई और नहीं देखता इस बात को.
But what does the Bible say?
तो क्या कहता है परमेश्वर का वचन इसके बारे में?
That you have done is evil in the sight of God.
और जो चीज तुमने किया है वो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है, दुष्ट है.
God sees our sin.
परमेश्वर हमारे पापों को देखता है.
And he is not pleased with our sin.
और वो हमारे पापों से प्रसन्न नहीं है.
But listen carefully.
लेकिन ध्यान से सुन इस बात को.
He is not our judge.
वो हमारा न्यायी नहीं है.
He is our father.
वो हमारा पिता है.
And he knows our frame. He's mindful that we are weak like dust.
वो हमारे ढांचे को जानता है, हमारे बनावट को जानता है. वो जानता है कि हम धूल के समान कमजोर हैं.
And like a father pities his children, so the Lord pities those that fear him.
और जिस तरह से एक पिता अपने बच्चों पे दया खाता है, उसी तरह से परमेश्वर भी हम पे तरस खाता है.
God loves us.
परमेश्वर हमसे प्रेम करता है.
He knows we're weak.
वो जानता है कि हम कमजोर हैं.
He is easy to please.
और उसको प्रसन्न करना बहुत ही आसान है.
Did you hear that?
क्या आपने सुना इस बात को?
God's not hard to please.
परमेश्वर को प्रसन्न करना मुश्किल नहीं है.
You don't have to beat yourself.
तो आपको अपने आप को ठोकना नहीं है, पीटना नहीं है.
God is easy to please.
परमेश्वर को प्रसन्न करना बहुत आसान है.
He looks at the heart.
क्योंकि वो हमारे हृदय को देखता
है. He knows we're weak.
वो जानता है कि हम कमजोर हैं.
He knows our need.
वो जानता है हमारी आवश्यकताओं को.
And he loves us.
वो हमसे प्रेम करता है.
And the weakest effort he receives.
और जो सबसे कमजोर प्रयास भी है वो जो उसको स्वीकार कर लेता है.
Now how do you see God?
और अब आप कैसे देखते हैं परमेश्वर को?
You see him as a strict judge?
क्या आप उसको एक बहुत ही सख्त न्यायी के रूप में देखते हैं?
He's looking down from heaven.
वो स्वर्ग से नीचे की ओर देख रहा है.
He's looking at everything you do.
और वो देख रहा है हर एक चीज आप कर रहे हैं.
You make one little sin.
और आप एक छोटे सी पाप किया है.
Is that the way you see God?
क्या आप इस तरह से परमेश्वर को देखते हैं?
God is a father.
परमेश्वर एक पिता है.
And he loves us.
वो हमसे प्रेम करता है.
And he sees our weakness.
वो हमारी कमजोरी को देखता है.
And he helps us.
वो हमारी मदद करता है.
Says, come on.
वो कहता है आओ.
Come on, I'll help you.
कह आता है आओ तुम हमारी मदद करेंगे.
Fall down.
वो आप गिर जाते हैं.
What does God do?
परमेश्वर क्या करता है?
Does he kick you?
क्या वो आपको लात मार देता है जब आप गिर जाते हैं?
Now, if you don't repent, he may kick you.
अगर आप पश्चाताप नहीं करेंगे तो हो सकता है वो आपको मारे.
But if you try to get up,
लेकिन अगर आप उठने की कोशिश करते
God
हैं
is there.
तो परमेश्वर वहां पे है.
He picks you up.
वो आपको उठाता है.
He cleans you off.
वो आपको साफ करता
he turns you around.
है आपको मोड़ता है वो.
And he pushes you in the way.
तो फिर वो आपको रास्ते में ढकेल देता है.
Why?
क्यों?
Because he loves you.
क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है.
But don't take advantage of God's grace.
लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह का फायदा मत उठाइए, गलत फायदा मत उठाइए.
God's grace should motivate us.
परमेश्वर का अनुग्रह हमको इस बात के लिए प्रेरित करना चाहिए.
God is easy to live with.
परमेश्वर के साथ जीवन बिताना बड़ा आसान है.
God is easy to please.
परमेश्वर को प्रसन्न करना बहुत आसान है.
God looks at the heart.
परमेश्वर हमारे हृदयों को देखता है.
God loves us.
परमेश्वर हमसे प्रेम करता है.
He knows our
weakness. वो हमारी कमजोरी को जानता है.
He will forgive us.
वो हमें क्षमा करेगा.
He will cleanse us from all unrighteousness.
वो हमें हमारी सारी अधार्मिकता से शुद्ध करेगा.
We do not have a high priest that cannot sympathize with our weaknesses.
हमारे पास एक ऐसा महायाजक नहीं है जो हमारी कमजोरी में हमसे सहानुभूति न रख पाए.
We have one that was tempted at all points as we are, yet without sin.
लेकिन वो हमारे वो ऐसा महायाजक है जो हमारे समान हर एक परिस्थिति में परीक्षा में पड़ा लेकिन फिर भी बिना पाप के रहा.
He is able to come to help those in their time of need.
और फिर अब वो उनके पास आ सकता है जिनको आवश्यकताओं के समय जरूरत होती है उसकी.
So how do we approach God?
तो हम कैसे परमेश्वर के पास आते हैं? हम इस तरह से डरते हुए उसके पास नहीं आते हैं.
But with boldness,
लेकिन हम साहस के साथ परमेश्वर के सामने आते हैं और पूरे भरोसे के साथ उसके सामने आते हैं और पूरे आश्वासन के साथ उसके सामने आते हैं क्योंकि वो मुझसे प्रेम करता है. यीशु मेरे मर गया. उसकी आत्मा मेरे भीतर है. परमेश्वर कहता है आओ. यीशु कहता है आओ. आत्मा कहती कि आओ. मैं परमेश्वर के पास आऊंगा. मैं अपने पापों को मान लूंगा. वो मुझे शुद्ध कर देगा क्योंकि वो मुझसे प्रेम करता है.
That's the way God is.
और परमेश्वर इसी तरह से कार्य करता है.
Amen.
Amen.
Amen. Oh, let's pray.
आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे.